दूरमेते विपरीते विशोची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। कठोपनिषद 10 की वो स्लाइड लगा दें, कठ 10 लिखा होगा। आज हम कठोपनिषद की 10वीं श्रृंखला पर है। पिछली बार हमने चर्चा की श्रेय और प्रेय की। दुनिया में दो तरह की रास्ताएं हैं, एक रास्ता जो अच्छा लगता है और एक रास्ता अच्छा लगता नहीं है पर अच्छा होता है। एक का नाम श्रेय है, सुप्रीम परफेक्ट है। दूसरे का नाम प्रेय है, जो प्लेजर देता है, खुशी देता है पर हमेशा अच्छा नहीं होता है। उसी को आगे आचार्य मृत्यु बढ़ाते हैं कि ये जो दोनों अलग अलग तरह के मार्ग है, ये दो विपरीत मार्ग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक बाहर की ओर जाने का है, एक अंदर की ओर जाने का है। तो एक अंदर और बाहर होने से दो विपरीत दिशाओं पर जाने वाले हैं। प्रेय से हम शरीर से मन से बहुत धनी बनते हैं, धनी शरीर से मन से बहुत धन, बहुत ज्ञान, बहुत विद्या, बहुत यश, बहुत कीर्ति पाते हैं। तो हमारा हमारी भौतिक वृद्धि होती है, भौतिक उन्नति होती है। ये जरूरी है, ये जीवन का जरूरी अंग है। पर एक दूसरा पक्ष है जो अंदर की उन्नति है, जिसमें आत्मा की उन्नति होती है, खुद की उन्नति होती है। ये श्रेय है, ये हमारा सुप्रीम गोल है, ये हमारा सब चरम लक्ष्य है। पर ये कठिन है, इसमें तत्काल सुख नहीं मिलता। वो करंट जो उसी समय हमें सुख नहीं मिलता, इसमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है। पर ये दो अलग अलग तरह के मार्ग है। एक का नाम है विद्या, जो आपको खुद तक ले जाए उसका नाम है विद्या, जो आपको दूसरों तक ले जाए उसकी नाम है अविद्या। अविद्या का ट्रांसलेशन जो डिक्शनरी में है वो यहां नहीं है। डिक्शनरी में तो अविद्या का मतलब इग्नोरेंस है, मूर्खता है, ना जानना है। ये एक टर्मिनोलॉजी है उपनिषद की शब्दों में। जो विद्या नहीं है वो अविद्या है। विद्या क्या है? उपनिषद कहता है कि विद्या का अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो हमें मुक्ति दिलाए। किससे मुक्ति दिलाए? दुख से, बंधन से। आजादी हमेशा बंधन से तो होती है। दूसरों के गुलामी बने, इंद्रियों के गुलाम बने, किसी के भी गुलाम बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम इंसान के गुलाम बनते। हम अपने परिवार के भी गुलाम बनते हैं, हम अपने खुद के इंद्रियों के गुलाम बनते हैं। गुलाम का अर्थ क्या होता है? जब मैं अपनी इच्छा से कर नहीं सकता, किसी दूसरे की इच्छा से मुझे करना पड़ता है। मुझे पक्का पता है कि आइसक्रीम खाना रोज मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर जब भी फ्रिज खोलता हूं मेरा जीव ललचाता है, मैं अपना हाथ रोक नहीं पाता हूं और डांट फटकार खाने के बावजूद भी थोड़ा खा ही लेता हूं। मतलब है कि मैं जो जानता हूं अच्छा है, जिसको मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं वो होता नहीं है। किसी दूसरे का ऑर्डर मेरे ऊपर चलता है, वो कौन है? मेरी अपनी जीभ है। मतलब मैं जीभ के गुलाम बन जाता हूं। तो मैं अपने आप को आजाद समझता हूं पर रियल लाइफ में मैं आजाद होता नहीं हूं। हम आजाद देश के नागरिक हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। दुनिया में कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता। हम किसी ना किसी के गुलाम होते हैं, या परिवार का, या समाज का, या धर्म का, या सरकार का, या कुछ ही किसी का नहीं तो अपने इंद्रियों के गुलाम होते हैं। इसीलिए हम वो सब कुछ जानते हैं क्या अच्छा है, पर जब करते हैं हमारे से बुरा होता है। बुरा का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी हमें पता है कि लंबे देर तक बैठ के टीवी देखना बुरी बात है, पर हम खुद ही देखते हैं। बच्चों को जरूर सलाह देते हैं, मत देखो, डांटते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं आप भी तो देखते हो, हम बड़े हैं, मतलब बड़ा कह करके अपने आप को बचा लेते हैं। पर बच्चा भी समझता है मेरी औकात हो जाए मैं भी देखूंगा 8-8 घंटे तक। तो हम वो जो टीवी देखने की जो लालच है, जो आंखों की जो इच्छा है, उसके उसके अधीन बिक चुके होते हैं। इसीलिए उपनिषद में जो शब्द किया कि जो भी ज्ञान हमें मुक्ति दिलाए वो तो विद्या है, और जिस ज्ञान से हम बंधे वो अविद्या है। अगर इसका हम इंप्लीमेंट करने लगे इस सेंटेंस का, तो दुनिया में जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन से जिनका हिंदी में आप मीनिंग करते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उपनिषद की भाषा में उनका नाम होना चाहिए अविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। अविद्या का अर्थ इग्नोरेंस नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, यहां अविद्या का अर्थ है वो विद्या जिससे हम बंधन में पड़ते हैं, जिसके कारण हम अपनी इंडिपेंडेंसी खो देते हैं। जब मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद कमाता हूं धन, अब मैं पैसे के साथ चिपक चुका हूं, मेरा अटैचमेंट पैसे के साथ है, जब भी पैसे कम होंगे मैं दुखी मिलूंगा, परेशान मिलूंगा। मैं घर बसाता हूं, जैसे ही घर बनाया अब घर के साथ अटैचमेंट है, अब मेरे सारे दुखों का जड़ मेरे घर में है, घर को चोट लगे दुख है, घर टूट जाए दुख है, घर में तूफान आ जाए दुख है, मैं बाहर जाऊं चोरी हो जाए दुख है, दरवाजा खराब हो जाए दुख है, अब मेरे सारे दुखों का रिश्ता उस घर से जुड़ गया, अब मैं बंध गया। एक कुत्ता भी पालता हूं तो भी दुखी हूं, कुछ छोड़ के कहीं वो कुत्ता भी मेरा मालिक बन जाता है, क्योंकि अब मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी आजादी छिनती जाती है। जिस ज्ञान से मैं बंधता हूं वो अविद्या है, जिस ज्ञान से मेरा बंधन छूटता है वो विद्या है। इसलिए वेदों की भाषा में विद्या सिर्फ एक ही है, खुद को जानना। तो खुद को जानने में आजादी कैसे मिलेगी? जिस दिन व्यक्ति को पता लगता है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा और शरीर का मिलावट हूं, मैं ना शरीर हूं ना आत्मा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या हूं, तब फिर दुनिया की चीजों में अपने आप इंटरेस्ट कम होने लगेगा। इसका अर्थ नहीं कि दुनिया छोड़ देगा, सुसाइड करके भाग जाएगा, जंगल भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब वो पहले जैसा था अब भी वैसा ही काम करेगा, उसी ऑफिस में काम करेगा, उन्हीं दफ्तरों में जाएगा, उन्हीं स्टोरों से सामान खरीदेगा, वैसे ही घर बनाएगा। फर्क इतना होगा, एक का अटैचमेंट होता है, एक का अटैचमेंट नहीं होगा। उसको पता है शरीर और आत्मा का मिलावट जीवन है, और जहां मिलावट है वहां अलग होना स्वाभाविक है। वो 50 साल में अलग हो, 100 साल में बिखरे, 150 साल में बिखरे, बिखरना जरूरी है। मुझे एक दिन अलग होना है शरीर और आत्मा से, फिर मैं नहीं रहूंगा, तो मुझे इन चीजों की चिंता नहीं करनी, जब तक हूं करता रहूं, पर अटैचमेंट की जरूरत नहीं। दुख का, आजादी का सबसे पहला फल क्या होता है? जब आप फ्रीडम पाते हैं तो क्यों क्यों दुनिया में फ्रीडम के लिए लड़ाइयां होती है, क्यों आजादी के लिए लड़ाई होती है? क्योंकि उससे सुख मिलता है। सुख का शर्त आजादी के साथ होता है। लोग देश गुलाम होने पर तो लड़ते हैं, जब खुद गुलाम होते हैं भी हम लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ते हैं। खुद को गुलामी से छुटकारा देने के लिए धर्मशास्त्र होते हैं, देश को, अपने शरीर को आजाद दिलाने के लिए आपके पास राजनीति शास्त्र होते हैं, समाजशास्त्र होता है, ये बेसिकली अंतर होता है। तो ये दो अलग अलग विद्याएं हैं, एक विद्या जो आत्मा को जानने के लिए, दूसरी विद्या जो शरीर को बढ़ाने के लिए। दोनों में से कोई खराब नहीं, दोबारा कहूं कोई छोड़ने लायक नहीं है। अगर हम शरीर का ख्याल न रखें तो हम आत्मा को भी पा नहीं सकते, इसलिए हमारे यहां दोनों की जरूरत है। एक अगर मास्टर डिग्री है, दूसरा हायर एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है। बिना प्राइमरी एजुकेशन के आप मास्टर बन ही नहीं सकते, पर जब आप प्राइमरी एजुकेशन कर चुके होते हैं तो आपको ऊपर बढ़ना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी में, आपको हाई स्कूल में, आपको इंटरमीडिएट में, आपको ग्रेजुएशन में, आपको मास्टर में जाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि नहीं मुझे इसमें मजा आ रहा है क्योंकि मैंने जिंदगी में अ आ ई ए बी सी डी सीखा, इससे पहले मुझे पता नहीं था, ये बड़ी अच्छी चीज है, अब मैं यही जिंदगी भर बैठा रहूंगा, तो जिंदगी भर हम पांचवी क्लास के बच्चे रह जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं, हम ना अटैचमेंट छोड़ते हैं, कितना भी अच्छा हो नहीं, हमें आगे बढ़ना है। गोल है श्रेय, प्रेय साधन है, प्रेय प्राइमरी क्लास है, श्रेय मास्टर डिग्री है, दोनों की जरूरत है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, पर यह जरूर है कि यह सुप्रीम गोल है और यह प्राइमरी गोल है, पर बिना प्राइमरी गोल के आप आगे नहीं पहुंच सकते हो। दोनों की जरूरत है, पर हे नचिकेता, मैंने तुम्हें उस सुप्रीम गोल को पाने वाला समझा, जो कि आम आदमी वो प्राइमरी गोल में पूरी जिंदगी बिता देता है, जो साधन है जिसके कारण सुख मिलना चाहिए वो साधनों में पूरी जिंदगी बिता देता है, साध्य और गोल को भूल जाता है। पर तुम्हें मुझे तुम मुझे ज्यादा समझदार लगे, ज्यादा अकलमंद लगे, तुम अपने साध्य और साधन को मीन्स और गोल में फर्क करना जानते हो। तुम्हें पैसा कमाना और पैसा कमाने का क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, उन दोनों में फर्क करना जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूं। आमतौर पर लोग कमाना जानते हैं, क्यों कमा रहे हैं ये नहीं जानते, और इसीलिए वो आम आदमी हो जाते हैं, वो बुरे आदमी नहीं होते, आम आदमी होते हैं, क्योंकि ये सबका नेचर होता है। अगला मंत्र देखेंगे, अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाना परियन्ति मूढाः अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। ये बड़ा सुंदर मंत्र है, कहता है दुनिया में ज्यादातर लोग अविद्या में, इग्नोरेंस में फंसे रहते हैं, खुद तो बड़े इग्नोरेंस में रहते हैं, खुद तो पराधीन गुलाम बन के रहते हैं, पर दूसरों को जरूर लेक्चर देते हैं, दूसरों को उपदेश जरूर देते हैं, अपने आप को विद्वान समझने वाले ऐसे लोग वो पूरी जिंदगी खुद तो भटकते रहते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने का काम भी करते हैं। वो ऐसा ही है जैसा एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है। दुनिया में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, जिनका मानना है कि जो कुछ ये जीवन में, ये जो दुनिया का सुख है, यही सब कुछ है। दूसरा वर्ग है जिसको लगता है कि ये दुनिया ही सबसे ज्यादा बेकार है, ये दुनिया से पार जब चला जाऊंगा सब अच्छा अच्छा मिलेगा। दूसरे का कहना है कि दुनिया के पार कुछ भी नहीं है, वो गधा है, वो बेवकूफ है जो सोचता है इस जीवन के बाद कुछ है, इसलिए इसी जीवन को एंजॉय करो। हमारी समस्या है कि हम उस मेंढक के तरह हैं जो कुएं में रहता है। एक मेंढक कुएं में गिर गया और धीरे धीरे मेंढक उसमें गिरते रहे, दो चार मेंढक, उनके बच्चे हुए। वो बच्चे जो कि कुएं में ही पैदा हुए, कुएं में ही बढ़े, कुएं में ही पले, अब वो जवान मेंढक है। एक दिन समुद्र का एक मेंढक लपकते लपकते कुएं में गिर गया। कुएं वाले मेंढक ने पूछा, भाई कहां से आए? बोला, समुद्र से आया। बोले, समुद्र क्या होता है? बोले, बहुत बड़ी चीज होती है। बोले, बहुत बड़ी चीज? हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अरे बहुत बड़ी चीज क्या, हमारे कुआं कुएं से बड़ा होगा? बोले, कुआं तो उसके सामने कुछ नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। फिर ठहाके लगा के हंसने लगे, इतना गधा है, कुएं से बड़ा कुछ होता है क्या? समुद्र के मेंढक ने समझाने की कोशिश की, पर जितना समझाए कुएं के मेंढक उतना मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि कुएं के मेंढक ने जीवन में कुएं से बाहर दुनिया नहीं देखा। तो जिसने भी कुएं से बड़ा कोई चीज कहा, कुएं के मेंढक ने हमेशा मजाक उड़ाया, कुएं से बड़ा कैसे कुछ हो सकता है। समुद्र को मेंढक समझा नहीं पाया, कभी भी नहीं समझा पाया। इसीलिए कुएं का मेंढक जो कहावत बड़ा फेमस हुआ, जो जिस दायरे में, जितने ज्ञान में, जितने विद्या में, जितना एरिया में रहता है, अगर वो समझ बैठे कि यही सबसे बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, उसी को कुएं का मेंढक कहते हैं। जिसको दुनिया में आनंद आता है, आता है, ना आने का कोई सवाल नहीं उठता, पर दुनिया के बाहर कोई आनंद नहीं, वो कुएं का मेंढक बन जाता है। पर समस्या है कि हमारे यहां दो तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को दुनिया ही मजा आता है, वो परमात्मा को मानते ही नहीं है। दूसरे वो जो परमात्मा को जान गए, उनको दुनिया में मजा नहीं आता है, वो दुनिया को बेकार समझते हैं। इसीलिए कहा, जो समझदार है वो दुनिया क्या और दुनिया के बाद क्या दोनों का सम्मान करता है, पर जो नासमझ है वो किसी एक रास्ते को पकड़ता है और सबको सलाह प्रवचन देता है, सबको उपदेश देता है, सारी दुनिया को सीख देता है। आप देखेंगे हमारे वहां, मुझे नहीं पता, यहां भारत में आपको छींक आया नहीं कि 100 डॉक्टर वैसे ही आपको मिल जाएंगे दवाई बताने के लिए। आप बस क्या है, आपको आपने शुरू किया कि मुझे बुखार है, तो दवाइयों की झड़ियां लग जाएगी और सारे मतलब एलोपैथिक दवाइयां बताएंगे, होम्योपैथिक बताएंगे, आयुर्वेदिक बताएंगे, नेचुरोपैथी बताएंगे, जड़ी बूटियां बताएंगे। और आप जब अगर 15-20 लोगों से आपने डिस्कस कर दिया, आप हम खुद पागल हो जाते हैं। और वो सारे के सारे, अगर आप कहोगे डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये दवाई खाओ, वो हंसी उड़ाएंगे, डॉक्टरों को क्या पता ये डॉक्टर ही तो बीमारी देते, ये खाओ देखो 4 दिन में ठीक हो गए। अब हम डॉक्टर को भी मानने को तैयार नहीं होते। ये जो झोला छाप और जो 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 आसपास के डॉक्टर इतने हो जाते, और ज्यादातर हिंदुस्तान की जो चिकित्सा है ये इसी से चलता है, 50% चिकित्सा तो इसी से चलती है, पड़ोसियों के दवाइयों से। उससे नुकसान होता है, अंधे नैव नियमाना यथांधा, जब एक अंधा खुद रास्ता नहीं जानता, वो परेशान होता है, आगे जाता है, पर पीछे से एक आदमी ने पूछा कि मुझे बताओ अमुक जगह आर्य समाज जाने के लिए रास्ता कहां से जाऊं, मैं अंधा हूं। पहले वाले अंधे को लगा, अच्छा इसका मतलब मैं रास्ता जानता हूं, किसी ने मुझे रास्ता पूछा है। बोला, चिंता मत करो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको ले जाऊंगा। दोनों अंधे रास्ते में गिरते हैं। और हमारी ज्यादातर हमारी जो जिंदगी है इसी तरह होता है, हम एक दूसरे को रास्ता बताते हैं, हमें पता है कि नहीं पता, वो हमें नहीं पता, पर हम दूसरों को जरूर पता बता देते हैं। और किसी मामले में हो ना हो, धर्म के मामले में तो हर आदमी पंडित होता है, हर कोई सलाह देता है, जो व्याख्यान देता है वो नीचे उतरता है, उसी को फिर आधा घंटा व्याख्यान सुनना पड़ता है। तो दुनिया में हर जगह आप देखेंगे, धर्म के मामले में आपको हर आदमी विद्वान मिलेगा, हर आदमी दूसरों को सलाह देता मिलेगा। इसीलिए दुनिया में धर्म के नाम पर इतने सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि वहां किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं होता साइंस की तरह, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होता मेडिकल साइंस की तरह, किसी टीचर की जरूरत नहीं होता एजुकेशन की तरह। यहां हर आदमी अपने आप को धर्म का बड़ा ज्ञानी समझता है, हर आदमी के पास अपने पास बहुत सारा ज्ञान समाया हुआ है, वो देना बांटता है, या इसी से अव्यवस्था फैलती है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है, बाजार में आपको बाबाएं मिलते हैं जो तावीज देते हैं, तावीज समझते हैं, जो बांधने से आपकी बुखार ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, भूत भाग जाएगा, बीमारियां नहीं होंगी, जो बांधते हैं। तो तावीज देने वाले राख हाथ से फू फू करके हाथ राख निकालते हैं लोग, बाबा जी कितने चमत्कार करते हैं, शून्य में पाउडर निकाल देते हैं, राख निकाल देते हैं। हिंदुस्तान के लिए खाना नहीं निकाल सकते, पर कोई इंग्लैंड से आदमी भक्त गया हो तो जरूर एक सोने की घड़ी निकाल देते हैं, और हिंदुस्तान से गांव का कोई भक्त गया तो उसके लिए राख निकाल देते हैं। ये फर्क जरूर होता है, वो देखते हैं डॉलर में देगा, यूरो में देगा कि रुपए में चंदा देने वाला है। अगर रुपए में देगा तो राख निकलेगा, अगर डॉलर में यूरो में देगा तो फिर घड़ी निकलती है, निकलती थी, अब तो चलेगा, चल बसे। तो बाबा निकल गए, बाबा भगवान हो जाते, और वो खुद अंधा जो ईश्वर क्या, धर्म क्या, अध्यात्म क्या नहीं जानता, वो करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाते हैं, अब करोड़ों लोग रास्ते देखने के तैयार हैं, क्योंकि रास्ता किसी को नहीं चाहिए, सबको ताबीज चाहिए। और इस तरह धर्म की गति चलती है। अगला मंत्र देखेंगे, नसाम पराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहे नमूढ़म अयम लोको नास्ति परैति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। जो धन के मोह से, इसका ट्रांसलेशन मूढ़ है, मूढ़ समझते हैं, मूर्छित है, जिसका अकल काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, और इसीलिए वो बाल है। बाल कहते हैं बच्चे को। जब भी हमारे शास्त्रों में एक परंपरा रही है, जो जिस विषय को नहीं जानता वो उस विषय का बच्चा है। हो सकता है कोई कोई कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, पर उसको मेडिकल साइंस में कुछ नहीं आता, तो वो मेडिकल साइंस के लिए बच्चा है। बच्चा, बाल का अर्थ होता है किसी विषय को न जानने वाला अज्ञ मूर्ख। ऐसे लोग जो धन के मोह से मूढ़ होते हैं, उनको जीवन के परे कुछ दिखता नहीं है। इस जीवन के परे कोई दूसरा जीवन हो सकता है, वो उनको नहीं दिखता है। वो लोग क्या मानते हैं कि यही जीवन है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ऐसा मानने वाला व्यक्ति जीवन भर जन्म जन्मांतर तक मेरे ही फंसे में बंधा रहता है, मैं मृत्यु, मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। ये बड़ा मजेदार श्लोक है, मंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हम वो नहीं देखते हैं जो दिखाई देता है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वो नहीं सुनते हैं जो सुनाई देता है, हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जब आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, कितने लोग आपके अगल बगल में बैठे होते हैं देखने के लिए, आपके आपके पास वहां 40 50 100 लोग बैठे होते हैं, पर आप सिर्फ दो तीन लोगों को देखते हो या याद रखते हो जिनको आप देखना चाहते हो। आपका मन जिसको देखने चाह, कुछ हरकत करता है, कोई कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, खराब देखने वाला है, आपका मन जिसको देखने को है सिर्फ आप उसी को देखते हो, आप वही इंप्रेशन लेकर आते हो, दूसरों को वही बताते हो। हम वो नहीं देखते जो दिखाई देता है। 100 लोग आर्य समाज आते हैं, जब 100 लोग यहां से जाते हैं 100 तरह की बातें लेकर जाते हैं। क्यों, किसको ये वेद मंत्र अंग्रेजी में लिखा हुआ दिखा, वो वही बोलेगा, देखो जी वहां वेद मंत्र अंग्रेजी में था, अच्छा था। किसी को लगेगा देखो वहां लाइट काफी सारे नहीं जलते थे वार्य समाज में, उसको वेद मंत्र पर नजर नहीं जाएगा, वो लाइट कम जलता है दिखेगा। किसी को प्रवचन सुनाई देगा, किसी को भोजन अच्छा दिखाई देगा, और पता नहीं किसी को ये भी दिख जाए कि वो ऑडियो और लाइट सिस्टम में बैठने वाले एक दो लोग दो दो घंटे से कितने चुपचाप मेहनत करते रहते हैं, उनको भी कोई ऑब्जर्व करके जाएगा कि वहां ऐसे भी लोग होते हैं जो चुपचाप पीछे काम करते रहते हैं दो घंटे तक, किसी को पता ही नहीं चलता कितना मैनेज करते हैं। और भी बहुत कुछ हमें दिखता है, पर हर आदमी को देखना अलग होता है, सुनना अलग होता है, सूंघना अलग होता है। परमात्मा अगर, ईश्वर अगर नहीं मिलता, आत्मा पर अगर भरोसा नहीं, इसीलिए नहीं है कि आत्मा नहीं है या परमात्मा नहीं है, इसीलिए कि कितने लोगों को जानने की देखने की इच्छा हुई है आज तक, कितना लोग सचमुच देखना चाहते हैं। अगर भगवान आ भी जाए तो भी हम डाउट करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। असली बात है कि हम वही देखना सुनना जानना चाहते हैं जैसा हमारा संस्कार है, जिस तरह के माहौल में हम पले बड़े हैं, इसीलिए हमें वही दिखता वही सुनाई देता जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम मानना चाहते हैं। हम सिर्फ, और ये पॉलिटिक्स में बहुत होता है, खास करके मीडिया वाले आप देखेंगे अगर न्यूज वगैरह देखते हैं, नेता ने क्या बोला, वो अच्छा बोला बुरा बोला नहीं, उनको कोई झगड़ा वाला पॉइंट चाहिए जिसमें डिबेट हो सके, जिसमें बहस हो सके, जिसमें देश में कुछ हलचल मच सके, उसी को वो दिन भर में 100-100 बार दिखाएंगे उसने ये बोला, बाकी एक घंटे में कितनी अच्छी चीजें बोला कितनी बुरी चीजें बोला वो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि मीडिया को वो चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें विवाद छिड़े और जिसमें बहस हो और जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा टीवी में चिपके रहे और हमारे 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 टीआरपी बढ़ते रहे, जितना लोग देखेंगे उतना हमारी टीआरपी बढ़ेगी, उतना एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, हमारी कमाई होगी। लोग वही सुनते हैं जो नेता बोलते हैं नहीं, जो मीडिया बताना चाहता है। शास्त्रों में जो बुराइयां, जो शास्त्रों के नाम पर जो गड़बड़ियां हुई हमारे देश में, क्यों हुई? क्योंकि पंडितों ने वो नहीं बताया जो शास्त्र में लिखा है, पंडितों ने वो बताया जो उनको शूट करता है। जैसे बुद्ध ने कहा कि ये वेद जो है वो बकवास है, ये बदमाशों का ग्रंथ है। बुद्ध वेद के विद्वान नहीं थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा वेद के नाम पर ये पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, गाय बकरी इंसान सबको काटते हैं, बलि देते हैं, जितने अत्याचार अनाचार व्यभिचार सब वेद के नाम पर करते हैं, कहते हैं ये वेद में लिखा है। बुद्ध वेद पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने कहा अगर ऐसा लिखा है तो उसको छोड़ दो, ऐसे वेद हम नहीं मानते। पुराने काल में वेद के एक भाष्यकार हुए महीधर उब्बट करके, दो विद्वान हुए। अगर गलती से आपने उनके यजुर्वेद भाष्य पढ़ लिया तो दुनिया में हिंदू तो छोड़िए, आप कहेंगे मैं किसी भी धर्म से नहीं जुड़ूंगा, इतना विभत्स, इतना घिनौना, इतना गंदा। उसी वेद के ऊपर जब आप दयानंद का भाष्य पढ़ते हैं आप, तो आपको गर्व होने लगता है, ये मेरे शास्त्र है। वेद तो वही है, इंटरप्रिटेशन अलग हुआ। इंटरप्रिटेशन क्यों अलग हुआ? क्योंकि आप क्या बताना चाहते हैं वो मायने रखता है। वो गीता है जब गांधी पढ़ता है उसको और कुछ मिलता है, जब विनोबा पढ़ता है उसको और कुछ मिलता है, जब उसको शंकर पढ़ता है उसमें उसको अद्वैत दिखता है, रामानुज पढ़ता है उसको उसमें द्वैत दिखता है, जो दयानंद पढ़ता है उसमें उसको त्रैत दिखता है। शास्त्र वही है। तो फिर ये सारा कहां से निकल जाता है? क्योंकि हम सिर्फ वही देखना चाहते हैं, देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। परमात्मा नहीं दिखता इसीलिए नहीं कि वो नहीं है, इसीलिए कि हम देखने की कभी हमारे अंदर वो जिज्ञासा नहीं, वो तड़प नहीं, वो वासना नहीं हुई, हमारी आंखें चुनती है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहां है? असली सवाल ये है कि परमात्मा को पाने की इच्छा कहां है? विवेकानंद जब रामकृष्ण थे तब वो स्वामी बने नहीं थे और बड़े नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। बंगाल के थे, उनके जमींदार घर के बच्चे थे। बहुत समझाया बुझाया तो बड़े बड़े घर में वो ज्ञानियों को, सन्यासियों को, संतों को बुलाते थे, पर विवेकानंद नहीं मानते थे। उनको उनका पहला सवाल होता था, आपने कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े प्रोफेसरों को, फिलोसोफर को, जो तर्क बहस डिबेट करके उनको समझ लॉजिक से समझा सके, वो भी नहीं समझा सकते थे। तो किसी मित्र ने कहा, एक काम करो, चलो एक दिन वहां वो नदी के किनारे, हुबली नदी के किनारे एक बाबा बैठे हैं, एक बार मिलकर आते हैं। बड़े मुश्किल से उनको समझा बुझा कर ले गए रामकृष्ण परमहंस के पास। तो उनको पागल बाबा कहते हैं क्योंकि वो पागल जैसा हरकत करते थे। तो जैसे ही नरेंद्र दत्त उनके पहुंचा, तो पहुंचने पर पहला सवाल रामकृष्ण ने पूछा, विवेकानंद ने पूछा कि मुझे लेक्चर मत झाड़ना, बस ये पहले बता दो तुमने ईश्वर को देखा है। तो रामकृष्ण ने कहा, देखा है? पहला आदमी मिला जो इतने जोर से, इतने फोर्सफुली बोला कि मैंने देखा है। तो एक झटका लगा विवेकानंद को, आज तो कोई इतनी कॉन्फिडेंशियली नहीं बोला था। अच्छा, तुम दिखा सकते हो मुझे? दिखा सकता हूं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, एक आदमी कहता है दिखा सकता है, मैं तो इतने सालों से परेशान हो गया पूछ पूछ के, तो दिखाओ ना, कब देखना चाहते हो ना, आप जब दिखा सकते हो। बोले मैं तो अभी भी दिखा सकता हूं। अभी दिखा दोगे? जी हां। कमाल है भाई, ईश्वर को अभी दिखा देगा? बोले एक शर्त है, ये पास में गंगा नदी है, हुबली नदी है, उसमें तुम्हें एक बार डुबकी लगानी है, उसके बाद ईश्वर दिखेगा। बोले तो 10 डुबकी लगा दूंगा? नहीं, मैं लगवाऊंगा। अच्छा चलो, रामकृष्ण नरेंद्र दत्त को लेकर गंगा में गए, उसका गर्दन पकड़ के पानी में डुबा के रखा जब डुबकी लगा रहे थे, और गर्दन पकड़ के रखा, रखे रखा 10 सेकेंड, 50-30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट। अब देखा कि अब वो मर जाएगा तो गर्दन छोड़ दिया। नरेंद्र दत्त पानी से बाहर आया, पहले तो धड़ाधड़ 2-4 लंबे लंबे सांस ले लिया। तो रामकृष्ण हंसने लगा, पूछा बताओ पानी के अंदर क्या सोच रहा था? बोले पागल कहीं का, सचमुच तुम्हें पागल बोलते हैं लोग, तो मेरे जान ले लेता ना वो। ठीक है, बताओ पानी के अंदर क्या सोच रहा था? क्या सोचूंगा, सांस चाहिए था, सांस। और कुछ सोच रहा था? सांस चाहिए था। पानी मीठा था, खारा था, नमकीन था, गंदा था, बहुत सारा पानी पी गया होगा? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए था सांस, चाहिए था सांस। और कुछ गाली दे रहा होगा, कितना पागल आदमी है, बुढ़ा आदमी, शटिया गया है, देखो कैसे मेरा गर्दन पकड़ के रखे, उठूंगा तो 4 थप्पड़ मारूंगा, कुछ नहीं मुझे सांस चाहिए था सांस। बोले देख, जिस दिन तुझे इतना ही तड़प हो जाए ईश्वर पाने के लिए, उसी क्षण मिल जाएगा। तू ये भटक भटक के नहीं मिलने वाला है तुझे, वो इच्छा चाहिए, वो तड़प चाहिए। तुझे सांस की जरूरत थी तो तू पानी से ऊपर के आया और सांस लिया। तुझे ईश्वर को जरूरत पड़ेगी तो जरूर ईश्वर मिलेगा। सवाल है कि ईश्वर की जरूरत किसको है? ईश्वर से कुछ काम हासिल करने की जरूरत तो जरूर है, बीमारी ठीक हो जाए, काम बन जाए, वगैरह वगैरह, ईश्वर की जरूरत किसको है? और जिसको सचमुच होगी, सचमुच इसको ईश्वर मिलता है। तो सवाल है कि उस सांस की तरह तड़प होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। इसीलिए लोगों को ईश्वर मिलता नहीं, लोग ईश्वर पर डाउट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर से कभी पाने की इच्छा ही नहीं हुई, इसीलिए उनको कभी ईश्वर नहीं मिलता। हमेशा ध्यान रखिए, जब आपको प्यास लगता है तभी हम पानी ढूंढते हैं, पानी हो भी नहीं दिखता है अगर आपको प्यास ना लगे, पानी हो भी नहीं दिखता है अगर आपको प्यास ना लगे, और प्यास लगे पानी नहीं भी हो तो भी दिखेगा। रेगिस्तान में जब आप गर्मी के मौसम में जाते हैं प्यासे लोग खूब मरते हैं क्योंकि उनको सामने वो पानी दिखता है, दौड़े रहते हैं दौड़े रहते हैं, पानी होता नहीं है पर प्यासा को पानी दिखता है। हम जो सोचते हैं जो पाना चाहते हैं हमें सिर्फ वही दिखता है। ईश्वर नहीं भी होता, मान लीजिए ईश्वर नहीं है पर जिसको पाने की ललक होता है उसको ना होने पर भी दिखेगा। ये जो बादल होते हैं ना, कभी कभी आप खुले आसमान में बादल के नीचे खड़े होकर देखिए, अलग अलग तरह के बादल मंडराते हैं, 10-20 लोग खड़े हो जाएं, एक क्रिश्चियन हो, एक मुसलमान हो, हिंदू हो, एक गणेश भक्त हो, एक शिव भक्त हो, एक आर्य समाजी हो, एक बच्चे हो दो चार, हर तरह के बच्चों को, एक बुद्ध को मानने वाला हो, सबको खड़ा कर दीजिए और कहेंगे बादल को देखकर बताएं आपको क्या दिख रहा है। किसी को क्राइस्ट दिखेगा तो किसी को हनुमान दिखेगा, किसी को गणेश दिखेगा, किसी को पूरा बादल दिखेगा और किसी को शेर दिखेगा, किसी को भालू दिखेगा। बादल वही है, हम उन आकृतियों में वही देखते हैं जो हमें दिखना चाहता है। ये यूरोप और अमेरिका में, वैसे भारत में भी है, यहां भी एक बड़ी है। अब पपीता काटा और उसमें कभी कभी किसी कारण से हार्मोन गड़बड़ हो जाने से कोई कुछ बन जाता है, देखो मेरी उभर आई इसमें, मदर मेरी। रोटी ब्रेड बनाते बनाते कुछ शकल बन जाता है तो क्राइस्ट आ गए। तो भारत में भी करते हैं, ये देखो मैंने कद्दू काटा इसमें गणेश निकल गए। गणेश नहीं निकला, आपको नहीं दिख, आपको दिखेगा अगर आप गणेश को मानते हो, नहीं मानते हो तो आपको गणेश नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, बच्चे को गणेश नहीं दिखेगा, आपके बच्चे को हाथी दिखेगा। बादल बादल है, रोटी रोटी है, पर आप उसका अर्थ निकाल देते हो अपने ढंग से। आपको वो नहीं है, वो रोटी में कोई गणेश नहीं, कोई क्राइस्ट नहीं, कोई कोई हनुमान नहीं है। रोटी रोटी है, वो कुछ दाग लग गया है पर आपको दिखता है, आप पूजने लग जाते हो तो दूसरे को कुछ नहीं दिखता क्योंकि आप देखना चाहते हो, इसीलिए दिखता, जो देखना नहीं चाहता है उसको कुछ नहीं दिखता। अज्ञानी का नजर संसार में जकड़ा हुआ है, इसलिए दुनिया में हर जगह उसको धन दिखता है, दौलत दिखता है, यश दिखता है, नाम दिखता है। ज्ञानी का नजर परमात्मा में चिपक चुका है, उसको पेड़ नहीं दिखता, उसको भालू नहीं दिखता, उसको इंसान नहीं दिखता, उसमें सब में परमात्मा दिखता है। यही जो पुराणों में ध्रुव की कहानी और प्रहलाद की कहानी यही है। प्रहलाद को हर जगह ईश्वर दिखता है, उसके बाप को हर जगह पैसा दिखता है। असुर कौन है? जो जो सांसारिक सुख में होता है। असुर कोई बुरी चीज नहीं है। और प्रहलाद को हर जगह ईश्वर दिखता है, इसीलिए उसके बाप का नाम हिरण्यकश्यप है। हिरण्य कहते हैं सोना, कश्य कहते हैं दीप्ति, चमक। उसको हर जगह सोने का चमक दिखता है। और प्रहलाद का नाम प्रहलाद है क्योंकि वो प्रसन्न है, आनंद है। जब आप सब जगह ईश्वर को देखोगे तो आपको दुख का कहीं नहीं रहेगा। और यही दोनों की लड़ाई है, एक भोगी है और एक भक्त है, और एक नास्तिक एक आस्तिक है। एक को संसार में आनंद मिलता है, एक को संसार के परे आनंद मिलता है। एक प्रहलाद एक हिरण्यकश्यप है और दोनों की लड़ाइयां हमेशा चलती रहती है। ध्रुव जंगल में चला जाता है, छोटा बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, उसकी मां उसको, उसकी सौतेली मां उसको जंगल में छोड़ देती है। उसको कोई सांप नहीं दिखता, सांप फूंकार उठाता है उसको अपने उसमें, उसको भगवान दिखता है। वो पेड़ों में उसको भगवान दिखता है, शेरों में उसको भगवान दिखता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। इसी को दूसरी भाषा में यजुर्वेद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूद्विजानत तत्र कः मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यत। जो उस स्थिति को पहुंच गया वो फिर हर प्राणी में खुद को देखता है, खुद में सबको देखता है। जब खुद में सबको, सब में खुद को देखता है, फिर क्या लोभ, क्या मोह, क्या शोक, फिर अपना कौन रहा, पराया कौन रहा। मेरे में जो मुझे दिखता है, मेरे दुश्मन में भी वही मुझे दिखता है, तो फिर दुश्मन कहां रहा, मैं कहां रहा, शत्रु कहां रहा, मित्र कहां रहा। इसलिए सन्यासी का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि उसको, जिसको सब जगह ईश्वर दिखता है, फिर पराया कौन, अपना कौन है। तो यह एक मुसीबत है। जो आत्मा में विलीन हो गया उसको हर जगह आत्मा दिखता है, जो संसार में विलीन हो गया उसको सब जगह संसार दिखता है। इसीलिए शंकर ने कहा कि तुझे अगर संसार दिखता है तो माया है, झूठ है, क्योंकि उसको सब जगह ईश्वर दिखता है। प्लेटो ने कहा अगर तुम्हें ईश्वर कहीं दिखता है तो तेरी माया है। स्टालिन ने कहा, लेनिन ने कहा अगर तुम्हें कहीं ईश्वर दिखता है तो तू माया में पड़ा है, ये संसार असली है, ये ईश्वर बेकार है। तो दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको जो दिखता है वही तो बोलेगा। शंकर को पेड़ में भी ईश्वर दिखता है, इसलिए कहता है पेड़ अगर दिख रहा है तो माया है। स्टालिन को पेड़ में, ईश्वर में भी पेड़ दिखता है, इसीलिए वो कहता है ये ईश्वर माया है। असली बात है कि तुम देखना क्या चाहते हो। तुम कम्युनिस्ट हो, तुम्हें दुनिया दिखेगी, तुम शंकर हो तो तुम्हें ब्रह्म दिखेगा। सवाल यह नहीं कि कोई चीज है कि नहीं है, सवाल यह है कि तुम देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। और जो लोग नहीं मानते हैं कि अगला जन्म है, यही सब कुछ है, नास्तिक है, मंत्र कहता है कि उनको बार बार मरना पड़ता है। मतलब देखिए, हमारा शास्त्र ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम कहें कि भाई जो हमें नहीं मानता वो हेल में जाएगा, और जो हमें मानता हमारा गढ़ उसको हेवन ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कंसेप्ट। मतलब ऐसे दूसरे रिलीजन से कंपेयर मत करिए। फिर क्या मतलब, ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं, इसमें कोई भगवान हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जो अगला जन्म नहीं मानता व ईश्वर को नहीं मानता, बार बार मरता है, जो मानता है वो मरता नहीं है। इसी बात को कहकर समाप्त करेंगे। मजेदार बात है, जब आपको लगता है, जब मुझे लगता है कि इसके आगे कुछ है नहीं है, तो मेरे लिए समस्या क्या है, एक ही जीवन मिला है तो जितना सुख भोगना है मैं भोग डालूं, पर मेरे लिए समस्या है मैं कभी भी मर सकता हूं। मुझे यह पता है कि मरना निश्चित है, अगला जन्म पता नहीं है, तो मुझे हर पल यह डर सताता है कहीं ना अभी ना मर जाऊं, ना तभी मर जाऊं, मैं मर गया तो क्या होगा, क्योंकि आगे तो मेरा कुछ नहीं है। तो मैं हर पल मरता हूं, हर पल मरता हूं, क्योंकि मुझे मरने से डर है। और जो जिससे डरता है वही आपको उसी हमेशा सताता है। जब आपको यह समझ में आ गया कि मैं आत्मा और शरीर का मिलावट हूं, ये जन्म एक पड़ाव है, मृत्यु एक पड़ाव है, मरना मतलब इस शरीर को छोड़ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे एक आदमी कपड़े छोड़ करके, पुराने कपड़े, बासी कपड़े, मनपसंद नहीं ये कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहनता है, इसी तरह आत्मा शरीरों को बदलता रहता है। ये शरीर बदल जाती है, मैं फिर एक दूसरे शरीर में प्रवेश करूंगा अपने कर्मों के अनुसार, मैं एक और जन्म लूंगा, तो मुझे किस बात की चिंता है, शरीर छूटेगा दूसरा शरीर मिलेगा। ये जरूर ध्यान रखूंगा कि अगर मेरे से कोई बुरे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, तो कोई मुझे खराब शरीर ना मिल जाए, कोई मैं ऐसा पेड़ पौधा ना बन जाऊं, कीड़ा मकोड़ा ना बन जाऊं, ऐसा जानवर ना मिल जाऊं जिसको इंसान सता सता कर मारता हो। तो मैं कुछ अच्छा काम करूं कि अच्छा जन्म मिले, इंसान का होकर पैदा हूं, अच्छे देश में पैदा हूं, अच्छे घर में पैदा हूं, जहां पालन पोषण अच्छा हो, खाने पीने की सामान अच्छा हो, जहां मेरे ह्यूमैनिटी की, मेरे इंसानियत का कदर हो, ऐसे घर में मैं पैदा हूं, तो मैं ये जरूर ध्यान रखूंगा कि मेरे से अच्छा काम हो बुरा काम ना हो। मरने से डरने के कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे समझ में आ गया कि मरना एक पड़ाव है, फिर आगे ये तो जीवन चलता रहता है। तो जो समझ गया उसको मरना नहीं होता, उसका शरीर बदलना होता है। जो नहीं समझा, नहीं मानता, उसके लिए मरना निश्चित होता है, और उसके लिए उसकी परेशानी, उसका दुख ज्यादा होता है। इसीलिए यमराज कहते हैं कि जो नहीं मानता कि इस जीवन के बाद कुछ है, इस सांसारिक सुख से ऊपर भी कोई सुख है, वो हर पल मरता है, और जो मान चुका है, जो जान चुका है, वो कभी नहीं मरता, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं अजर अमर नित्य सनातन हूं। इसी के साथ इस बात को यहां विराम देता हूं। ओम शांति।